आगे सबक देखिए भाई। लअन तज़वीज للتلفيق والنكاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوك اصلا ولنا ان التمليك سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز। गुज़श्ता सबक में साहिबे कुदूरी ने वो अल्फाज जिक्र फरमाए थे जिनसे निकाह मुनाकिद हो जाता है और बतलाया कि निकाह तजवीज हिबा तमलीक और सदका इन सब लफ्जों से निकाह मुनाकिद हो जाता है और मैंने तफसील बतलाई थी कि इनमें से निकाह और तजवीज ये निकाह के अंदर सरीह हैं। निकाह वो भी निकाह करने या निकाह करवाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है और तजवीज का माना भी शादी करवाना या इसी से तजव्वुज है शादी करना यानी निकाह करना और निकाह करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन लफ्जों का और कोई माना नहीं। तो ये लफ्ज सरीह है निकाह के अंदर, इनका माना ही क्या है निकाह करना या निकाह करवाना। तो इनसे निकाह मुनाकिद हो जाएगा, इसमें किसी नियत वगैरह की जरूरत नहीं। ये आगे तफसील आगे आएगी भाई तलाक के मसले में भी कि सरीह लफ्ज जो है वहां मसलन जो लफ्ज तलाक के लिए सरीह है जैसे लफ्ज तलाक, तलाक का माना ही तलाक है, इसका और कोई माना नहीं। तो जब कोई खावंद अपनी बीवी से कह दे कि मैंने तुझे तलाक दे दी तो उसमें नियत नहीं देखी जाएगी, बस तलाक हो गई, क्योंकि इस लफ्ज का और कोई माना ही नहीं है। तो ये सरीह है तलाक के अंदर भाई, ये लफ्ज तलाक। इसी तरह ये जो निकाह और तजवीज हैं ये निकाह के बाब में सरीह हैं, इनका माना ही निकाह करना और निकाह करवाना है, लिहाजा यहां नियत को नहीं देखा जाएगा। जब इन लफ्जों को जिक्र किया जाएगा तो उनसे निकाह मुनाकिद हो जाएगा भाई। अलबत्ता हिबा तमलीक और सदका ये जो है ये किनाया है निकाह से। किनाया मैंने बतलाया था कि बात को जरा घुमा कर जिक्र करना, साफ लफ्जों में बात न करना बल्कि ऐसे लफ्जों से बात जिक्र करना जिसमें और माना भी हो गई। तो अब देखो हिबा का वैसे माना तो है तोहफा देना, इसी तरह तमलीक का माना है मालिक बनाना, और इसी तरह सदके का माना है अल्लाह की रजा के लिए किसी को कोई चीज देना, उसको उस चीज का मालिक बनाना। तो इनका माना निकाह नहीं, लेकिन निकाह के अंदर भी इनको इस्तेमाल किया जाए तो इनसे निकाह मुनाकिद हो जाएगा भाई। तो ये निकाह के अंदर ये अल्फाज किनाया हैं। क्या हैं? किनाया। और किनाये के अंदर और चूंकि और भी माना का इस्तेमाल होता है लिहाजा वहां कोई दलील चाहिए जिससे पता चले कि इनसे निकाह किया जा रहा है, और वो दलील क्या है कि नीयत होनी चाहिए। तो किनाये के अंदर हमेशा नीयत की जरूरत पड़ेगी, दलील चाहिए होगी जिससे पता चले कि यह माना मुराद है भाई। तो यहां पर भी कोई शख्स हिबा सदका या तमलीक के अल्फाज को निकाह के लिए इस्तेमाल करता है और निकाह की नीयत करता है तो इससे निकाह मुनाकिद हो जाएगा भाई। तो ये किनाया है, और किनाये के लिए क्या चाहिए? दलील, और दलील क्या होगी? उसकी नीयत। अगर नीयत नहीं है फिर निकाह मुनाकिद नहीं होगा। और फिर बाज औकात नीयत के साथ साथ लफ्जों में भी दलील आ जाती है। मसलन एक शख्स दूसरे शख्स से किसी औरत का निकाह करवाता है तो वो जो औरत का वकील है वो ये अल्फाज मसलन बोलता है कि मैंने फुला औरत आपको हिबा कर दी और 1 लाख रुपए बतौर महर के। तो ये जो 1 लाख रुपए बतौर महर के ये जो साथ जिक्र किया इससे पता चल गया कि यहां हिबा बोलकर हिबा का इरादा नहीं है बल्कि निकाह का इरादा है। तो देखो ये दलील भी आ गई। तो ये दलील क्या है? असल तो नीयत है, और कभी कभी लफ्जों में या कोई और साथ कोई और करीना वगैरह भी मिल जाएगा वो दलील बन जाएगी। तो हासिल कलाम क्या कि सरीह लफ्ज के अंदर नीयत की जरूरत नहीं और किनाये के अंदर नीयत की जरूरत होगी। और उसके बाद फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह की बात आई थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि निकाह और तजवीज ये तो सरीह लफ्ज हैं, इनसे तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा, लेकिन बाकी जो लफ्ज हैं हिबा तमलीक और सदका वगैरह इनके जरिए निकाह मुनाकिद नहीं होगा भाई। और फिर मैंने तफसील बयान की थी कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह की बात समझने के लिए याद रखें हकीकत और मजाज को। एक लफ्ज का हकीकी माना होता है और एक उसका मजाजी माना। हकीकी माना वो है जिसके लिए किसी लफ्ज को वजा किया जाए, मुकर्रर किया जाए, और उस माना के अलावा किसी और माना में उस लफ्ज को इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो उसका मजाजी माना कहलाता है। जैसे लफ्ज शेर, लफ्ज शेर उर्दू जुबान में एक जंगली दरिंदे के लिए वजा है, तो जंगली दरिंदा शेर का हकीकी माना हुआ। और यही लफ्ज बहादुर आदमी के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो बहादुर आदमी इसका मजाजी माना हुआ भाई। और मैंने यह भी बतलाया था कि जब भी लफ्ज को जिक्र किया जाता है तो जहन फौरन पहले हकीकी माना की तरफ जाता है, लेकिन अगर आप उसको मजाजी माना में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहां कोई करीना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करीना। फिर करीना किसे कहते हैं? यह लफ्ज तो हर जगह आता है किताबों में, तो आपको इसका माना आना चाहिए। करीना वो चीज है जो मतलूब और मकसूद की तरफ इशारा कर दे। मसलन आपने शेर का लफ्ज बोला है और आप इरादा किसका कर रहे हैं? बहादुर आदमी का, तो इसके लिए कोई करीना चाहिए, क्योंकि ये तो आपके दिल की बात है कि आपने शेर से क्या मुराद लिया है, बहादुर आदमी। ये तो आपके दिल की बात है, सुनने वाले को तो आपके दिल का पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए कोई करीना चाहिए। उस करीने से उसको पता चल जाएगा कि यहां कहने वाले की मुराद हकीकी माना की नहीं है बल्कि मजाजी माना की है। और ये करीना लफ्जों में भी हो सकता है तो उसको करीना लफ्जिया कहते हैं, और लफ्ज के अलावा भी हो सकता है तो वह करीना गैर लफ्जिया है। तो करीना यही दो किस्म पर होता है, या वह करीना लफ्जिया होता है या करीना गैर लफ्जिया कहते हैं। और फिर इनके नाम मुख्तलिफ हैं, कभी इसी जो गैर लफ्जिया है उसको कह देंगे करीना मानविया, कभी कह देंगे कि वो करीना हालिया है, या इस तरह और भी जो भी मौके के मुताबिक कोई नाम जिक्र कर दिया जाएगा। लेकिन आप मुख्तसर लफ्जों में याद रखें कि करीना दो ही किस्म पर है, या वो लफ्जिया होगा या गैर लफ्जिया होगा भाई। करीना लफ्जिया होगा यानी लफ्जों से ही पता चल जाएगा कि यहां हकीकी माना मुराद नहीं है बल्कि मजाजी माना मुराद है। मसलन मैं आपसे कहता हूं कल मैंने एक शेर को हंसते हुए देखा, तो आपको यहां फौरन पता चल गया कि शेर से हकीकी माना यानी जंगली दरिंदा मुराद नहीं है बल्कि इसका मजाजी माना बहादुर आदमी मुराद है। और करीना क्या है? ये जो हंसने का फेल जिक्र हुआ, क्योंकि जो हंसने का फेल है ये इंसान की सिफत है और हैवानात की सिफत नहीं है, इससे पता चल गया कि यहां शेर का मजाजी माना यानी बहादुर आदमी है भाई। इसी तरह या दूसरी मिसाल ले लें, कल मैंने एक शेर को तीर चलाते हुए देखा, तो यहां भी करीना लफ्जिया है। ये जो तीर चलाना है ये बतला रहा है कि शेर का यहां हकीकी माना मुराद नहीं बल्कि मजाजी माना मुराद है। और कभी जो है कोई और करीना वहां होगा, हालत होगी या कोई और चीज होगी, तो उसको करीना गैर लफ्जिया कहेंगे। मसलन आपका साथी मस्जिद में आया और आपने कहा शेर आ गया, तो अब यहां पर ये जो मस्जिद में इस वक्त तो कोई जंगली दरिंदा दाखिल नहीं हुआ, एक इंसान दाखिल हुआ है, मालूम हुआ आपका इरादा शेर से बहादुर आदमी का है। इस हालत ने बतला दिया, किसने? ये जो हालत है कि मस्जिद के अंदर जंगली दरिंदा नहीं आया बल्कि कौन आया है? एक इंसान आया है, यह बतला रहा है कि यहां आपने शेर के लफ्ज से जंगली दरिंदे का इरादा नहीं किया बल्कि मजाजी माना का इरादा किया है भाई। बात समझ में आ गई। और फिर मैंने आपको यह भी बतलाया था कि लफ्ज को जब अपने हकीकी माना में इस्तेमाल किया जाए तो उसको हकीकत कहते हैं। कल मैं चिड़ियाघर गया था, वहां मैंने एक शेर देखा, यह लफ्ज शेर क्या है? हकीकत है। कल मैंने एक शेर को हंसते हुए देखा, ये शेर क्या है? मजाज है। बात समझ में आ रही है? जैसे इसम फेल और हर्फ लफ्ज की किस्में हैं, लफ्ज की किस्मों में जो जैद है ये क्या है? इसम, इसका नाम ही इसम है, ये फुला इसम वाली किस्म है। इसी तरह जाराबा ये क्या है? ये फेल है। ये कौन सी किस्म है? फेल, इसको फेल कहते हैं, इसका नाम फेल है। और मीन और इला ये क्या है? हर्फ है। इसी तरह ये जो कल मैं चिड़ियाघर गया था वहां मैंने शेर देखा, इस लफ्ज शेर का नाम क्या है? हकीकत। ये क्यों हकीकत क्यों है? क्योंकि ये किस माना में इस्तेमाल हुआ है? हकीकी माना में। और कल मैंने एक शेर को हंसते हुए देखा, यहां ये जो लफ्ज शेर आया इसको क्या कहेंगे? मजाज कहेंगे। तो जब आपको कोई बता दे ये लफ्ज हकीकत है, किसी जुमले में, किसी कलाम में कोई लफ्ज आए और वो आपको क्या कहे, ये हकीकत है, आप समझ गए कि इसका यहां कौन सा माना करना है, हकीकी माना। और अगर कोई बतला दे कि ये इस जुमले के अंदर ये जो लफ्ज आ रहा है ये मजाज है, आप समझ गए कि इसका हकीकी माना यहां मुराद नहीं बल्कि मजाजी माना मुराद है। और मैंने बतलाया था ये हकीकत और मजाज इस्तेमाल के एतबार से किसमें हैं। जब तक एक लफ्ज को कोई इस्तेमाल नहीं करेगा कलाम में, आप ये नहीं कह सकते कि यह हकीकत है या मजाज। मसलन मैं आपके सामने कहूं कि बताइए भाई लफ्ज शेर ये क्या है, हकीकत है या मजाज? कौन सा लफ्ज? शेर। तो आप कहेंगे इसको इस्तेमाल तो करें किसी जुमले में, फिर ही हमें पता चलेगा कि यह हकीकत है या मजाज है। तो इस्तेमाल से पहले कोई लफ्ज ना हकीकत है और ना मजाज है भाई। और फिर मैंने यह भी बतलाया था कि माने हकीकी और माने मजाजी में हमेशा कोई ना कोई रब्त होगा, ताल्लुक होगा। बगैर रब्त के आप एक लफ्ज को किसी माना में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं बकरी का लफ्ज बोलूं और इरादा हाथी का करूं, भाई बकरी और हाथी में तो कोई मुनासबत नहीं है, लिहाजा बकरी का लफ्ज बोलकर मैं हाथी का इरादा नहीं कर सकता। तो हकीकी माना और मजाजी माना में कोई ना कोई रब्त और ताल्लुक होगा भाई। और ये रब्त और ताल्लुक जो है कई किस्म पर हो सकता है। ये रब्त और ताल्लुक अगर तशबीह वाला हो तो फिर इस मजाज को इस्तेआरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्तेआरा। मसलन मस्जिद में एक शख्स आया और मैंने कहा अब शेर आ गया, तो अब मैंने शेर के कौन सा माना का इरादा किया? मजाजी माना का। और हकीकी माना क्या है? जंगली दरिंदा। और मैंने किसका इरादा किया? बहादुर आदमी का। इन दोनों में ताल्लुक और रब चाहिए। यहां कौन सा ताल्लुक है? तशबीह वाला है। मालूम हुआ मैं इस आदमी को जो मस्जिद में आया है इसको मैं तशबीह दे रहा हूं उस जंगली दरिंदे के साथ, यानी जैसे जंगली दरिंदा बहादुर होता है ये भी क्या है? बहादुर। तो यहां जो दोनों में ताल्लुक है हकीकी माना और मजाजी माना में वो तशबीह वाला है। और जब ये ताल्लुक तशबीह वाला हो तो इसको क्या कहते हैं? इस्तेआरा। इसको इस्तेआरा। और अगर तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक हो दोनों मानी के अंदर तो उसको मजाज़े मुरसल कहते हैं। एक लफ्ज है उसका हकीकी माना लेकिन आपने हकीकी माना के बजाय और माना में इस्तेमाल कर लिया, तो ये जो मजाजी माना है इसका हकीकी माना के साथ कौन सा ताल्लुक हो? तशबीह के अलावा कोई ताल्लुक हो तो उसको क्या कहते हैं? मजाज़े मुरसल कहते हैं। और मजाज़े मुरसल के अंदर कितने किस्म के ताल्लुक हो सकते हैं? उलमा ने कोई 20-25 आलाके जिक्र फरमाए हैं, 20-25 किस्म के रब्त जिक्र फरमाए हैं। मसलन एक रब्त क्या है कि जुज बोलकर कुल का इरादा कर लिया जाए। दूसरा मसलन ताल्लुक क्या है? कुल बोलकर जुज का इरादा कर लिया जाए, यानी पहले के बराक्स। पहले में क्या था? जुज बोलकर कुल का इरादा, और फिर इसका बराक्स कर लो कुल बोलकर जुज का इरादा। देखो ये दो ताल्लुक हो गए। तीसरा ताल्लुक मसलन जर्फ बोलकर मजरूफ का इरादा कर लेते हैं। चौथा ताल्लुक मसलन मजरूफ बोलकर जर्फ का इरादा कर लेते हैं। या इसी तरह आप जो है वो सबब बोलकर मुसबब का इरादा कर लेते हैं या मुसबब बोलकर सबब का इरादा कर लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ इलाके हैं मजाज़े मुरसल के भाई। जैसे कुरान में इसकी मिसाल है, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं यजअलूना असाबिअहुम फी आदानिहिम, वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। अब असाबिअ जमा है असबुअ की और उंगली को कहते हैं, लेकिन कान में तो उंगली नहीं डाली जाती, कान में तो उंगली का एक हिस्सा एक पूरा दाखिल किया जाता है। तो और जिक्र तो उंगलियों का है, तो मालूम हुआ यहां उंगली बोलकर उसका जुज यानी पूरा मुराद है। तो ये मजाज़े मुरसल है। क्या है? मजाज़े मुरसल है भाई। और मैंने बतलाया था कि आप भी अपने कलाम में इस तरह इस्तेमाल करते हैं इसको। मसलन आप एक साथी के पास गए, आपको साथी ने शरबत पिलाया और फिर अब वो आपसे कहता है और पीजिए, आप कहते हैं कि मैंने दो गिलास पी लिए हैं और नहीं पीऊंगा। भाई आपने दो गिलास पिए हैं, गिलास तो भाई स्टील या शीशे का होगा, तो आपने स्टील या शीशे का गिलास नहीं पिया बल्कि उसके अंदर जो शरबत था वो शरबत पिया है। तो यहां गिलास बोलकर यानी जर्फ बोलकर क्या मुराद है? मजरूफ, जो उसके अंदर शरबत था वो मुराद है। या इसी तरह आप कहते हैं दरिया बह रहा है या नहर बह रही है। भाई दरिया, दरिया तो उस जगह का नाम है, नहर तो उस जगह का नाम है और उसके अंदर पानी बहता है, तो बहता तो पानी है लेकिन आपने किसको जिक्र कर दिया, उस जगह को यानी जर्फ को। तो यहां पर भी जर्फ बोलकर क्या मुराद है, मजरूफ की यानी नहर के अंदर पानी बह रहा है। बात समझ में आ गई। उसके बाद मैंने आपको किनाये के बारे में भी बतलाया था कि इल्मे बलागत के अंदर किनाया इसको कहते हैं कि मलजूम बोलकर लाजिम का इरादा किया जाए। मलजूम बोलकर लाजिम, मसलन जैद का कद लंबा है और आप किसी को बतलाना चाहते हैं, एक तरीका तो यह है कि आप साफ लफ्जों में कहें जैद लंबे कद वाला है, यह यूं कहें जैद का कद लंबा है, और एक इसी बात को आप जरा घुमा कर कहें कि जैद की कमीज लंबी है, यूं कहें जैद लंबी कमीज वाला है, और इरादा किसका कि जैद लंबे कद वाला है। तो देखो जिक्र तो आपने लंबी कमीज को किया लेकिन इरादा लंबे कद का है। तो ये लफ्ज़ को आपने माने मौजू लहू में इस्तेमाल किया या गैर मौजू लहू में, ये माने गैर मौजू लहू में इस्तेमाल किया। तो देखा किनाये के अंदर भी लफ्ज़ गैर मौजू लहू में इस्तेमाल होता है और मजाज के अंदर भी लफ्ज़ माने गैर मौजू लहू में इस्तेमाल होता है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है, मैंने बतलाया था कि फर्क ये कि किनाये के अंदर आप वहीं पर हकीकी माना का भी अगर इरादा करें तो कलाम गलत नहीं होता। मसलन आपने क्या कहा, जैद लंबी कमीज वाला है और इरादा किसका किया कि उसका कद लंबा है, लेकिन अगर आप हकीकी माना का ही इरादा कर लें यहां पर कि लंबी कमीज से लंबी कमीज ही मुराद है, कद नहीं मुराद, तो भी कलाम आपका सही है कि जैद लंबी कमीज वाला है। लेकिन मजाज के अंदर आप हकीकी माना का इरादा नहीं कर सकते वरना वहां कलाम गलत हो जाएगा। आप मसलन आपने कहा मैंने कल एक शेर को हंसते हुए देखा और यहां शेर से क्या मुराद है, बहादुर आदमी, लेकिन अगर आप हकीकी माना का यहां इरादा कर लें तो फिर आपका कलाम गलत हो गया, क्योंकि जंगली दरिंदा वो तो नहीं हंस सकता, हंसना तो सिर्फ किसकी सिफत है, इंसान की। तो फर्क समझ में आया, मजाज के अंदर भी लफ्ज माना गैर मौजू लहू में इस्तेमाल होता है, किनाये में भी लफ्ज गैर मौजू लहू में इस्तेमाल होता है, और किनाये के अंदर वहीं पर अगर हकीकी माना का इरादा किया जाए तो भी कलाम सही रहता है, और मजाज के अंदर अगर माना हकीकी का इरादा किया जाए तो फिर कलाम सही नहीं रहता। फिर मैंने आपको यह भी बतलाया था कि किताबों में आपको मिलेगा कि अल किनाया तू अब लहू मीना सरीह, कि किनाया जो है वो अफजल होता है सरीह के मुकाबले में, और उसकी वजह क्या है, वजह यह कि किनाये के अंदर दावे के साथ साथ दलील भी आ जाती है। आपने कहा जैद की कमीज लंबी है और इरादा किस माना का किया कि उसका कद लंबा है, तो आपने जिक्र तो कमीज को किया तो मलजूम बोला और इरादा किसका किया, लाजिम का किया, क्योंकि कमीज के लंबा होने के साथ कद का लंबा होना लाजिम है, कमीज उसी की लंबी होगी जिसका कद लंबा होगा भाई, तो आपने जिक्र किया मलजूम का और इरादा किसका किया, लाजिम का, तो ये सिर्फ दावा ही नहीं है बल्कि दावे के साथ दलील भी आ गई। सरीह के अंदर सिर्फ दावा होता है जबकि किनाये के अंदर दावे के साथ दलील भी आ जाती है। क्या आ जाती है, अगर आप सिर्फ ये कहते हैं जैद का कद लंबा है तो ये तो सरीह लफ्ज़ साफ लफ्जों में आपने एक बात की तो इसमें दावा तो हो गया लेकिन दलील ना आई, जबकि किनाये में दावे के साथ साथ दलील भी आ जाती है कि जैद की कमीज लंबी है और इरादा क्या कि उसका कद लंबा है, तो दावा यह हो गया कि जैद का कद लंबा है और साथ दलील भी आ गई, क्या दलील है कि उसकी कमीज लंबी है, यही तो दलील है इस बात की कि उसका कद लंबा है। और जाहिर सी बात है एक सिर्फ दावा हो और एक दावा माद दलील हो, दावे के साथ दलील भी जिक्र हो, कौन सी सूरत आला है कि दावे के साथ दलील को भी जिक्र किया जाए। इसलिए अलकिनाया तो अबलग मिन सरीह ऐ अफजल मिन सरीह, मैंने बताया अबलग किस माना में है, अफजल के माना में है, तो किनाया सरीह के मुकाबले में अफजल होता है क्योंकि इसमें दावे के साथ साथ दलील भी आ जाती है। बात समझ में आ गई। तो इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह की बात चल रही थी, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि निकाह और तजवीज के लफ्ज से तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा क्योंकि ये निकाह के बाब में सरीह हैं, इनका माना ही निकाह करने और निकाह करवाने के है, लेकिन बाकी ये जो लफ्ज हैं हिबा तमलीक और सदका इनके अंदर दूसरे को एक चीज का मालिक बनाया जाता है। तो ये सारे तमलीक पर दलालत करते हैं। किस पर? हां वो जाब्ता भी रह गया, जाब्ता मैंने बतलाया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस लफ्ज़ के जिक्र करने से निकाह मुनाकिद होगा और किस लफ्ज़ के जिक्र करने से निकाह मुनाकिद नहीं होगा। तो मैंने बतलाया था कि फुकहाए किराम फरमाते हैं कि जिस लफ्ज़ के जरिए भी तीन फायदे हासिल होंगे उसके जरिए निकाह मुनाकिद हो जाएगा। और वो तीन फायदे क्या हैं? तमलीकुल आइनी फिलहाल, तमलीकुल आइनी फिलहाल, यानी तमलीक का फायदा हो कि उसमें दूसरे को मालिक बनाया जाए, और तमलीक भी आयन की हो। मैंने बताया था एक है आयन एक है मनाफिया, आयन जात को कहते हैं, तो तमलीक किसकी हो? जात की तमलीक हो, उसमें मनाफिया की तमलीक ना हो। गई मैंने बतलाया था कभी कभार दूसरे को आयन का मालिक बनाया जाता है, कभी दूसरे को मनाफिया का मालिक बनाया जाता है। जैसे आप बाजार से कोई चीज खरीदने गए, आप पैसे अदा करते हैं और वो चीज ले आते हैं, अब आप उस चीज की जात ही के मालिक बन गए, ऐन ही के आप मालिक बन गए। और कभी कभार आप चीज की ऐन के मालिक नहीं बनते बल्कि उसके सिर्फ मुनाफा के मालिक बनते हैं। जैसे आप किराए पर बाजार से कोई चीज ले आए तो अब आप सिर्फ उसके मुनाफा के मालिक हुए हैं, आप उसको इस्तेमाल करेंगे और फिर मुकर्रा वक्त पर वापस दे देंगे। तो देखा, उस चीज की आप मालिक नहीं बने, सिर्फ उसके इस्तेमाल और उसके मुनाफा के मालिक बने थे जी। तो तमलीक कभी ऐन की होती है और कभी तमलीक मुनाफा की होती है। अगर ऐन की तमलीक हो तो फिर ये कभी बिल इवज होगी और कभी बिला इवज। इसी तरह मुनाफा की तमलीक जो है, मुनाफे का किसी को मालिक बनाना, वो भी कभी बिल इवज होगा और कभी बिला इवज होगा। तो अगर तमलीकुल ऐन हो, किसी चीज की जात का मालिक बनाया जाए बिल इवज, इवज के साथ, तो इसको बै कहते हैं। बै के अंदर भी क्या होता है, आप एक चीज के मालिक बनते हैं लेकिन इवज आप उसका अदा करते हैं। तो तमलीकुल ऐनी बिल इवज इसको क्या कहते हैं? बै। आप लफ्जों में बै जिक्र करें या ना करें, यह है बै ही। मसलन आप मसलन तोहफा जिक्र कर देते हैं, आप अपने साथी के पास गए और उसको कहा यह किताब मैं आपको तोहफे के तौर पर देता हूं लेकिन शर्त यह है अपना यह कलम मुझे दे दें। अब वो कलम मसलन फर्ज करें वो सिर्फ 10 रुपए का है और किताब 500 रुपए की है, तो ये उसकी कीमत तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आप बदल और इवज ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो एतबार मानी का होता है। और यहां पर दोनों तरफ से इवज आ रहा है और दोनों तरफ से इवज जब आए, यानी माल हो दोनों तरफ से, तो उसको क्या कहते हैं? बै। तो ये बै हो रही है। लफ्ज आपने बेशक तोहफे का जिक्र किया कि मैं किताब आपको तोहफे के तौर पर दे रहा हूं, लेकिन हकीकत में यह क्या है? बै है भाई। तो तमलीकुल ऐन बिल इवज हो तो ये क्या है? बै। और अगर तमलीकुल ऐन बिला इवज हो तो इसको हिबा और तोहफा कहते हैं भाई। और अगर तमलीकुल मुनाफा हो, मुनाफा का मालिक बनाया जाए, उसमें इवज भी लिया जाए, तो ये इजारा है, किराए पर कोई चीज देना। कि आप मसलन गाड़ी किराए पर लाते हैं तो आप सिर्फ गाड़ी के मुनाफा और उसके फायदों के मालिक हुए हैं, आप उस पर सफर वगैरह कर सकते हैं, आप गाड़ी के मालिक नहीं हुए। तो तमलीकुल मुनाफा बिल इवज हो, इसको क्या कहते हैं? इजारा, किराए पर कोई चीज देना। और अगर तमलीकुल मुनाफा बिला इवज हो तो इसको आरियत कहते हैं। क्या कहते हैं? आरियत कहते हैं। जैसे घरों के अंदर मेहमान आए तो हम सायों से बर्तन इस्तेमाल के लिए ले लिए जाते हैं, तो देखो यहां उन बर्तनों को इस्तेमाल के बाद वापस किया जाता है, तो आप बर्तनों के मुनाफा के मालिक हुए हैं, उन बर्तनों की ऐन के मालिक नहीं, और बिला इवज हुए हैं, तो ये आरियत है। तो तमलीकुल ऐन बिल इवज हो ये बै, तमलीकुल ऐन बिला इवज हो ये हिबा है, और तमलीकुल मुनाफा बिल इवज हो तो ये इजारा है, इजारा है। और अगर तमलीकुल मुनाफा बिला इवज हो तो ये आरियत है भाई। तो फुकहाए किराम फरमाते हैं कि जो लफ्ज भी तीन फायदे देगा उसमें अक़्दे निकाह की नीयत की जाए तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा। और वो तीन फायदे क्या है? तमलीकुल ऐन फिलहाल, कि तमलीक भी हो मालिक बनाना भी हो, और मालिक भी मुनाफा का ना बनाया जाए बल्कि ऐन का, उस चीज की जात का मालिक बनाया जाए, और नीज मालिक भी मुस्तकबिल वगैरह में ना हो, बाद में ना हो, बल्कि फिलहाल उसी जमाने में हो। तो जो लफ्ज भी इन तीनों चीजों का फायदा देगा, तमलीक भी हो और तमलीक भी आयन की हो और फिलहाल हो, उसमें निकाह की नीयत की जाएगी तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा। अब आप गौर कर लें, हिबा तोहफा देना, जब आप किसी को तोहफा देते हैं तो देखो आप उसको मालिक बना रहे हैं, और किस चीज का मालिक बना रहे हैं, सिर्फ मुनाफे का या उस चीज का ही मालिक बना रहे हैं, उस चीज का ही यानी आयन का ही मालिक बना रहे हैं। और किस वक्त, उसी वक्त मालिक बनेगा या फिर आगे किसी जमाने में जाकर मालिक बनेगा, वो उसी वक्त क्या है, मालिक बन जाएगा। बात समझ में आ गई तो मालूम हुआ हिबा ऐसा लफ्ज है जो तमलीकुल आयन फिलहाल का फायदा देता है, लिहाजा इसके जरिए निकाह मुनाकिद हो जाएगा अगर निकाह की नीयत करेंगे आप। और इसी तरह तमलीक का लफ्ज है, तमलीक का माना मालिक बनाना, आप किसी को कहते हैं लो भाई मैंने इस चीज का आपको मालिक बना दिया, हिबा का लफ्ज नहीं बोलते बल्कि क्या लफ्ज बोलते हैं, मालिक बनाना। इसमें भी देखो तमलीकुल आयन होगा और फिलहाल उसी वक्त मालिक बनता है, लिहाजा इस तमलीक के लफ्ज को भी अगर आप निकाह के अंदर इस्तेमाल करें तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा। इसी तरह सदका, सदका जो है उसमें किसी को मालिक बनाया जाता है चीज का अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, किसी को कोई चीज दी जाए अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए उसको क्या कहते हैं, सदका। तो सदके के अंदर भी देखो जब आप किसी फकीर या मोहताज को कोई चीज देते हैं तो आपने उसको उस चीज का मालिक बना दिया, तो तमलीक भी है, मालिक बनाना भी है, और तमलीक भी किसकी है, ऐन की है, उस चीज का ही आपने उसको मालिक बना दिया और उसी वक्त वो मालिक बन गया, तो मालूम हुआ सदका भी तमलीकुल आयन फिलहाल का फायदा देता है, लिहाजा इसके जरिए भी अगर निकाह की नीयत की जाए तो आते निकाह मुनाकिद हो जाएगा। इसी तरह बैअ भी है, आगे चलकर बैअ भी बतलाएंगे, बैअ भी किस चीज का फायदा देती है, तमलीकुल आयन का फिलहाल। आप गए, आपने दुकानदार को पैसे दिए और उससे कोई चीज ली, आप उस चीज के मालिक बन गए, तो तमलीक किस चीज की हुई, आयन की हुई और उसी वक्त हो गई, तो बैअ का लफ्ज भी तमलीकुल आयन फिलहाल का फायदा देता है, लिहाजा बैअ का लफ्ज बोला जाए और निकाह का इरादा किया जाए तो उससे भी अक्द निकाह मुनाकिद हो जाएगा। इसी तरह एक लफ्ज है इबाहत और इहलाल, मुबाह करना और हलाल करना दोनों का एक ही माना है, मुबाह करना यानी जायज कर देना, इजाजत दे देना, हलाल कर देना। आप दावत पर जाते हैं तो वहां पर आपके लिए खाना हलाल कर दिया जाता है, मुबाह कर दिया जाता है कि आप जितना खाना चाहें खा सकते हैं, लेकिन आपको उस खाने का मालिक नहीं बनाया गया, खाने का मालिक नहीं बनाया गया, लिहाजा इसीलिए अगर कोई वो खाना ले जाना चाहे तो कोई भी उसको अच्छा महसूस नहीं करेगा कि भाई इस शख्स ने आपके लिए खाना मुबाह किया है, हलाल किया है, आपको खाने का मालिक नहीं बनाया। तो मालूम हुआ इबाहत और इहलाल इसमें तमलीक है ही नहीं, सिरे से तमलीक ही नहीं है, तो मालूम हुआ इनसे निकाह भी मुनाकिद नहीं होगा, क्योंकि निकाह सिर्फ उन लफ्जों से मुनाकिद होता है जो तमलीकुल आयन फिलहाल का फायदा दें, और इनमें तो तमलीक ही नहीं है सिरे से। इसी तरह वसीयत के लफ्ज के साथ अगर कोई शख्स निकाह करता है कि वकील आकर कहता है कि मैं फुला जो औरत है उसकी आपके लिए वसीयत करता हूं 10 लाख रुपए बतौर महर के, नहीं भाई, वसीयत के अंदर मालिक तो बनाया जाता है और मालिक भी आयन का बनाया जाता है, लेकिन फिलहाल या मौत के बाद, मौत के बाद मालिक बनाया जाता है। एक शख्स कहता है मेरे मरने के बाद मेरी ये गाड़ी जैद को दे देना, तो देखो उसने मालिक बनाया और आयन यानी जात का मालिक, गाड़ी की जात का मालिक बनाया, लेकिन उसी वक्त या मौत के बाद, मौत के बाद, तो इसलिए लिहाजा वसीयत के लफ्ज से भी अक़्द निकाह मुनाकिद नहीं होगा। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह की बात चल रही थी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अक़्द निकाह जो है निकाह और तजवीज के लफ्ज से ही मुनाकिद होगा और किसी लफ्ज से नहीं। इनसे क्यों मुनाकिद होगा, क्योंकि इनका माना ही निकाह करना और करवाना है और इनका कोई माना ही नहीं, तो ये सरीह है निकाह के बाद में, लिहाजा इनसे तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा। लेकिन ये जो बाकी अल्फाज हैं ये निकाह और तजवीज से ना तो हकीकत हैं और ना उससे मजाज हैं, ना तो और ना मजाज, यानी हिबा तमलीक और सदका, ना तो इनका हकीकी माना निकाह है और ना इनका मजाजी माना निकाह है, लिहाजा इनसे निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि लफ्ज के तो दो ही माना होते हैं, या वो अपने हकीकी माना में इस्तेमाल होता है या मजाजी माना में। और हिबा तमलीक और सदका क्या इनका हकीकी माना निकाह है, इनका तो हकीकी माना निकाह नहीं, यह बात तो सबको पता है कि इनका माना निकाह नहीं। मालूम हुआ ये तजवीज और निकाह के अंदर ये तीनों लफ्ज हकीकत नहीं है। अगर इस्तेमाल करें भी आप तो ये हकीकत नहीं बन सकते क्योंकि इनका हकीकी माना है ही नहीं। किसका? हिबा, तमलीक और सदका। इनका हकीकी माना ना निकाह है और ना तजवीज, तो ये निकाह के अंदर हकीकत भी नहीं और निकाह के अंदर ये मजाज भी नहीं है भाई, क्योंकि हकीकी और मजाजी माना के दरमियान रबत जरूरी है, मुनासबत जरूरी है और यहां हकीकी और मजाजी माना में कोई मुनासबत नहीं। हकीकी और मजाजी माना में भाई लफ्ज के इस्तेमाल के दो ही तरीके हैं, या हकीकी माना में इस्तेमाल होगा या मजाजी माना में। ये हिबा तमलीक और सदका ये निकाह और तजवीज के लिए हकीकत भी नहीं, यानी इनका हकीकी माना भी ये नहीं है और इनका मजाजी माना भी निकाह और तजवीज के नहीं किया जा सकता। इनको मजाजन भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता निकाह और तजवीज के लिए। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि माने हकीकी और माने मजाजी में क्या होनी चाहिए? मुनासबत। बगैर मुनासबत के मैंने बताया बकरी का लफ्ज है, आप उसको हाथी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हकीकी और मजाजी माने में मुनासबत होती है और यहां हिबा तमलीक और सदका इनका मजाजी माना भी निकाह और तजवीज नहीं हो सकता क्योंकि इनके हकीकी माना की निकाह और तजवीज के साथ कोई मुनासबत नहीं है। अब आगे आज का सबक शुरू होगा जहां इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील जिक्र होगी, वो बतलाएंगे कि कैसे इनका मजाजी माना भी निकाह और तजवीज नहीं हो सकता। कौन से तीन लफ्ज? हिबा, तमलीक और सदका। इनका हकीकी माना तो निकाह नहीं है, ये तो सबको पता है, इनका हकीकी माना निकाह और तजवीज नहीं। और वो आगे फरमाते हैं कि इनका मजाजी माना भी निकाह और तजवीज आप नहीं कर सकते भाई। तो जब ना इनका हकीकी माना निकाह और तजवीज है ना इनका मजाजी माना निकाह और तजवीज है, तो फिर इनसे निकाह कैसे हो सकता है? लफ्ज के इस्तेमाल के तो दो ही तरीके होते हैं, या उसको हकीकी माना में इस्तेमाल करते हैं या मजाजी माना में इस्तेमाल करते हैं। इनका हकीकी माना भी निकाह और तजवीज नहीं और मजाजी माना भी निकाह और तजवीज नहीं कर सकते, तो फिर इनसे निकाह मुनाकिद नहीं होगा। आप बेशक ये लफ्ज इस्तेमाल कर लें और आप बेशक नियत कर लें निकाह की, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं निकाह मुनाकिद नहीं होगा। इंदाल हनाफ निकाह मुनाकिद हो जाएगा, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं निकाह मुनाकिद नहीं होगा। अब आगे उनकी दलील जिक्र करने लगे हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील क्या है कि इनका मजाजी माना निकाह और तजवीज क्यों नहीं हो सकता? इनका मजाजी माना निकाह और तजवीज क्यों नहीं हो सकता? जी जी, अब देखिए आगे सबक भाई कहते हैं लिअन्न तजवीज अलि तल्फीकी व निकाह अलि जम्मी वला जम्म वला दिवाज बैनल मालिकी वल ममलूकी असला। भाई अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील आ गई, तवज्जो से सुने भाई, ये जरा मुश्किल जगह है भाई। दलील किस चीज की बयान होगी कि हिबा, सदका और तमलीक इन तीन लफ्जों का मजाजी माना भी निकाह और तजवीज नहीं हो सकता। इनका मजाजी माना भी निकाह और तजवीज नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि हकीकी और मजाजी माना में कुछ ना कुछ मुनासबत होनी चाहिए, लेकिन यहां इनके हकीकी माना की निकाह और तजवीज के साथ कोई मुनासिबत मौजूद नहीं है। भाई देखिए भाई कहते हैं लिअन्न तजवीज अलि तल्फीकी, इसलिए क्योंकि तजवीज जो है वो तल्फीक के लिए होती है। याद रखो लफ्फका युलफ्फिकु तल्फीक का माना है दो कपड़ों को मिलाकर सी देना, यानी उसकी दो तहें बना देना, उसके दो तहें बना देना, यानी कपड़ा दोहरा हो गया, दोहरा हो गया, तो देखो उसमें कपड़े की मजबूती बढ़ गई। एक तह होती तो उसमें उतनी मजबूती नहीं, तो लेकिन जब दो तह वाला हो गया कपड़ा तो अब वो मजबूत हो गया, अब उसको फाड़ना आसान काम नहीं, तो इसको तल्फीक कहते हैं, दो कपड़ों को मिलाकर सी देना, उसकी दो तहें बना देना। बात समझ में आ गई? तो ये है तल्फीक भाई, लफ्फक युलफ्फिकु तल्फीकन, दो कपड़ों को मिलाकर सीना, उसको दोहरा कर लेना। इसी तरह मुजर्रद से भी इस्तेमाल होता है लफ़का यल्फिकु, उसका भी यही माना है, दो कपड़ों को मिलाकर सीना, उसको दोहरा कर लेना। और इसमें देखो जब दो कपड़ों को आपने मिलाकर सिया तो इसमें दोनों कपड़ों के अंदर मजबूती आ गई, क्योंकि हर कपड़े को दूसरे कपड़े से सहारा मिल गया। सिर्फ एक कपड़ा होता तो उसमें वो मजबूती नहीं, लेकिन साथ जब दूसरा कपड़ा आ गया तो दोनों एक दूसरे को मजबूत बनाने वाले बन गए। पहली तह दूसरी तह की वजह से मजबूत हो गई और दूसरी तह पहली तह की वजह से मजबूत हो गई, तो देखो इसमें दोनों के अंदर मजबूती आ गई। ये तो मैंने लुगवी माना बयान किया तल्फीक का, लेकिन यहां तल्फीक से मुराद निकाह की मसलहतें हैं। देखो निकाह के अंदर जो मसलहतें और फायदे हासिल होते हैं वो सिर्फ मर्द को या सिर्फ औरत को हासिल नहीं होते, बल्कि दोनों को हासिल होते हैं। दोनों को इसकी वजह से औलाद भी हासिल होगी, दोनों की शहवत का इलाज भी होगा, दोनों का घर भी बस जाएगा और दोनों को इत्मीनान और सुकून वाली जिंदगी मिल जाएगी। भाई तो देखो तजवीज किस लिए होती है? तल्फीक के लिए, यानी निकाह की मसलहतों के लिए। क्या माना निकाह की मसलहतें? यानी दोनों को ये फायदे हासिल होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये माना है कि तजवीज जो है वो तल्फीक के लिए होती है, यानी निकाह की मसलहतों को हासिल करने के लिए होती है, और सिर्फ एक शख्स को वो फायदे हासिल नहीं होते बल्कि दोनों को फायदे हासिल होते हैं। जिन दोनों का भी निकाह करवाया गया है या जिन दोनों ने भी निकाह किया है वो मसलहतें और फायदे दोनों को हासिल होंगे। आगे कहते हैं वन निकाह हली जम्मी, ये निकाह का अतफ तजवीज पर हो रहा है और तजवीज जो है अन्ना का इसम है, मंसूब है, तो कैसे पढ़ेंगे? वन निकाह लिज़म्मी, और निकाह जम के लिए आता है मिलाने के लिए। जम उनका क्या माना? मिलाना और जोड़ना। भाई देखिए मैंने आपको शुरू में चंद बहसें लिखवाई थी भाई, और मैंने बतलाया था कि निकाह का माना अरबी जुबान के अंदर वती के भी हैं और अकद के भी हैं। फिर बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये दोनों इसके हकीकी माना है निकाह के। भाई निकाह शरीयत में तो निकाह कहते हैं वह अक़दुन युफीदु मिल्कल मुताती कस्तन, वो अकद है जो कस्दन मिलके मुता का फायदा दे, लेकिन ये तो शरीयत में है, फिका में है। अरबी जुबान में निकाह किसे कहते हैं? मैंने आपको बतलाया था कि इसका अरबी जुबान में इसका माना वती के भी हैं, वती करना, सोहबत करना, और इसका माना अकद के भी हैं। और फिर बाज उलमा फरमाते हैं ये दोनों इसके हकीकी माना है, यानी इसको दोनों मानी के लिए वजह किया गया है, यानी ये लफ्ज मुश्तरक है, ये लफ्ज मुश्तरक है, तो ये मुश्तरक लफ्जी इसको करार देते हैं। और जबकि बाज उलमा फरमाते हैं नहीं, वती इसका हकीकी माना है और आकद इसका मजाजी माना है, और बाज उलमा इसके बराक्स फरमाते हैं कि नहीं, आकद इसका हकीकी माना है अरबी जुबान में और वती इसका मजाजी माना है। और बाज उलमा फरमाते हैं कि निकाह जो है इसका हकीकी माना न वती है न हकद है, इसका हकीकी माना है ज़म्मुश्शैई इलश्शैई, एक चीज को मिलाना दूसरी चीज के साथ। तो निकाह का हकीकी माना क्या हुआ? ज़म्मुश्शैई इलश्शैई, यूं कहो मुख्तसरन ज़म्मुन मिलाना है। निकाह का माना क्या है? मिलाना और जोड़ना है, और यह माना सादिक आता है वती पर भी और हकद पर भी। आकद के अंदर भी एक मर्द और एक औरत को मिला दिया गया, अब वो मियां बीवी कहलाते हैं, पहले एक दूसरे के लिए हराम थे, अब दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हो गए। तो यहां पर भी देखो मिलाना है, एक मर्द और औरत को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। इसी तरह वती के अंदर भी मिलाने वाला माना है कि एक शर्मगाह को मिला दिया गया दूसरी शर्मगाह से, तो देखो दोनों में मिलाने का माना है। तो ये उलमा क्या फरमाते हैं कि निकाह का हकीकी माना क्या है? जम है, मिलाना है, और ये माना सादिक आता है वती पर भी और आकद पर भी। तो ये मुश्तरक मानवी है, मुश्तरक लफ्जी नहीं। मुश्तरक लफ्जी किसको कहते हैं? कि एक ही लफ्ज के कई मानी हो। और मुश्तरक मानवी किसे कहते हैं? कि जो माना के एतबार से कई चीजों पर सादिक आए, माना के एतबार से। जैसे निकाह का क्या माना बयान किया? आकद भी नहीं, वती भी नहीं है। ये बाज उलमा का जो कौल है उसकी तकरीर मैं कर रहा हूं। निकाह का माना अकद भी नहीं और वती भी नहीं, बल्कि वो फरमाते हैं निकाह का क्या माना है? ज़म्मुश इलश्शै, यूं कहो ज़म्मुन मिलाना है, और ये मिलाना अकद में भी पाया जाता है और ये मिलाना वती में भी पाया जाता है। तो ये निकाह का लफ्ज अकद और वती पर सादिक तो आता है, लेकिन खुद इसका माना अकद या वती नहीं है। یہ ان پر صادق آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تزویج کس لیے ہوتی ہے؟ تلفیق کے لیے، نکاح کی مصلحتوں کے لیے، اور وہ مصلحتیں صرف مرد کو حاصل ہوتی ہیں یا عورت کو بھی حاصل ہوتی ہیں؟ دونوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ نکاح للضمی، اور نکاح جو ہے ملانے کے لیے ہے، جوڑنے کے لیے ہے۔ تو نکاح بھی کیا کرتا ہے؟ مرد کو عورت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اور صرف ایک کا فائدہ ہوتا ہے یا دونوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے نکاح کا؟ دونوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ تزویج تلفیق کے لیے ہے، یعنی مصلحتیں ہیں اور دونوں کی مصلحتیں ہیں، اور نکاح جوڑنے کے لیے ہے اور جوڑنے کے اندر بھی کیا ہے؟ دونوں کی مصلحتیں اور فائدے ہیں۔ لیکن آگے دیکھیے، لِأَنَّ التَّزْوِيجَ لِلتَّلْفِيقِ وَالنِّكَاحَ لِلضَّمِّ وَلَا ضَمَّ وَلَا ازْدِوَاجَ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْمَمْلُوكِ أَصْلًا، ولا ضم ولا ازدواج بین المالک والمملوک اصلا۔ ضم کا کیا معنی؟ ملانا۔ ازدواج کا معنی، یاد رکھو، ازدواج اسی تزویج سے ہے، اس کا مادہ بھی زا و جیم ہے، اور ازدواج کا معنی ہے جوڑا ہونا، دو ہونا۔ ازدواج کا کیا معنی؟ کوئی چیز دو ہو یا جوڑا ہو، تو یہ جوڑا ہونا اور دو ہونا یہ کیا ہے؟ ازدواج۔ اسی طرح دو چیزوں کے درمیان مناسبت ہو، اس کو بھی ازدواج کہتے ہیں۔ دو چیزیں ایک دوسرے کے ہم شکل ہو، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ازدواج۔ تو یہاں اس کو معنی مناسبت کے کر لیں، کیا کر لیں؟ مناسبت کے۔ تو کہتے ہیں ولا ضم ولا ازدواج، اور نہ کوئی جوڑ ہے اور نہ کوئی مناسبت ہے، بین المالک والمملوک، مالک اور مملوک کے درمیان، اصلاً ای قطعاً، مالک اور مملوک میں قطعاً کوئی مناسبت نہیں۔ توجہ ہے، یہ مشکل مقام ہے، اچھی طرح سمجھ لیں اس کو۔ بھائی دیکھو، بھائی بات چل رہی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہیں، ہبہ، تملیک اور صدقہ، یہ سب تملیک کا فائدہ دیتے ہیں۔ اے احناف، آپ نے ان سے نکاح کو جائز قرار دیا، کیونکہ یہ سب کس چیز کا فائدہ دیتے ہیں؟ تملیک کا فائدہ دیتے ہیں۔ لیکن تملیک جو ہے، تملیک کا نہ تو معنی حقیقی نکاح اور تزویج ہے، اور نہ اس کا معنی مجازی نکاح اور تزویج ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان مناسبت کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں تملیک اور نکاح و تزویج کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے۔ کیوں نہیں مناسبت؟ کہتے ہیں دیکھو، تملیک کا مطلب ہے مالک بنانا۔ جب آپ نے ایک شخص کو ایک چیز کا مالک بنا دیا، تو وہ شخص ہوا مالک، اور وہ چیز کیا ہوئی؟ مملوک۔ اور مالک اور مملوک میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی، کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک غلام کسی شخص کو دیا، یا ایک باندی کسی شخص کو دی، وہ اس کا کیا بن گیا؟ مالک بن گیا۔ وہ مالک بنا، اور وہ غلام اور باندی کیا ہیں اس کے؟ وہ مملوک ہیں۔ اور مجھے بتائیے، مالک جب کوئی غلام یا باندی خریدتا ہے، تو اس میں مالک اپنا نفع دیکھتا ہے یا غلام کا بھی نفع دیکھتا ہے؟ مالک اپنا نفع دیکھتا ہے، غلام یا باندی کا نفع نہیں دیکھتا۔ تو دیکھو، تملیک کے اندر دونوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ مالک بنانا جو ہے، اس میں مالک اور مملوک دونوں کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف کس کا فائدہ دیکھا جاتا ہے؟ مالک کا فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مالک اور مملوک میں کوئی مناسبت نہیں ہے بھائی۔ مالک جو ہے وہ صاحب تصرف ہوتا ہے، وہ جس قسم کا تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ اپنا نکاح جہاں چاہے کر سکتا ہے، وہ بیع و شراء وغیرہ کاروبار جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن غلام یا باندی، وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح بھی نہیں کر سکتے، وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کوئی تجارت وغیرہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو مالک کیا ہے؟ صاحب تصرف۔ اور غلام یا باندی تو صاحب تصرف نہیں ہے۔ تو دیکھو، تملیک کے اندر مالک اور مملوک دونوں کا فائدہ ہے یا صرف مالک کا فائدہ ہے؟ صرف مالک کا فائدہ ہے۔ تو نکاح اور تزویج، اس میں تو مصلحتیں ہیں، ملانا ہے، دونوں کے فائدے، اور تملیک کے اندر صرف مالک کا فائدہ ہے، مملوک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر سنو، نکاح اور تزویج میں دونوں کے فائدے اور مصلحتیں، اور تملیک کے اندر صرف مالک کا فائدہ، یعنی دونوں کے مصلحتیں نہیں ہیں۔ تو یہ تو دونوں کے اندر منافات ہے بھائی۔ نکاح اور تزویج میں دونوں کے فائدے، اور تملیک کے اندر एक का फायदा, दोनों के फायदे नहीं, तो लिहाजा दोनों में मुनासिबत ही कोई नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो निकाह और तजवीज जो है उसकी तमलीक के साथ कोई मुनासबत नहीं है, क्योंकि तमलीक में दोनों के फायदे और मसलहतें नहीं होती, जबकि निकाह और तजवीज में दोनों के फायदे और दोनों की मसलहतें होती हैं, तो दोनों में कोई मुनासबत नहीं है। यूं कहो दोनों मुतनाफियन हैं, एक दूसरे के मुनाफी हैं, एक दूसरे के, क्योंकि दो चीजों में से एक होगी, या दोनों का फायदा होगा या एक का फायदा होगा। देखो एक है दोनों का फायदा होना और एक है सिर्फ एक का फायदा होना, ये तो एक दूसरे के मुनाफी हैं। इन दो सूरतों में से एक ही होगी, या तो दोनों का फायदा होगा या एक का फायदा होगा, इन दोनों में मुनाफात है। जहां दोनों का फायदा हो वो और चीज है, जहां सिर्फ एक का फायदा हो वो और चीज है, दोनों में कोई मुनासिबत नहीं है, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। जहां दोनों का फायदा है आप ये नहीं कह सकते सिर्फ एक का फायदा हुआ, और जहां सिर्फ एक का फायदा है वहां आप ये नहीं कह सकते दोनों का फायदा हुआ। तो एक वक्त में दोनों में से एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, या तो दोनों का फायदा होगा या सिर्फ एक का फायदा होगा। बात समझ में आ गई? निकाह और तजवीज में दोनों का फायदा और तमलीक में सिर्फ एक का फायदा, तो ये दोनों एक दूसरे के मुनाफी हैं, ये तो एक दूसरे की जिद हो गए। जैसे सुबह और शाम, या सुबह का वक्त होगा या शाम, एक ही वक्त सुबह भी हो जाए और शाम भी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। जैसे सर्दी और गर्मी, सर्दी और है गर्मी और है, एक ही वक्त गर्मी भी हो और सर्दी भी हो ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह या दोनों का फायदा होगा या सिर्फ एक का फायदा होगा, दोनों का फायदा है तो आप ये नहीं कह सकते ये सिर्फ एक का फायदा है, और सिर्फ एक का फायदा हो तो आप ये नहीं कह सकते दोनों का फायदा है, ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। जैसे सुबह और शाम इकट्ठे नहीं हो सकते, सर्दी और गर्मी इकट्ठे नहीं हो सकते, इसी तरह ये तमलीक और तजवीज और निकाह इकट्ठे नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के मुनाफी हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं, दोनों चीजों में से एक चीज हुई जाएगी, या दोनों का फायदा होगा या दोनों का फायदा नहीं होगा। भाई तो जहां दोनों का फायदा है वो अलग चीज, जहां सिर्फ एक का फायदा है वो अलग चीज है, ये इकट्ठी हो ही नहीं सकती, इनमें कोई मुनासबत है ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा मालूम हुआ तमलीक का मजाजी माना भी निकाह और तजवीज नहीं कर सकते, क्योंकि मजाजी माना की हकीकी माना के साथ मुनासबत होती है, और यहां तो कोई मुनासबत नहीं, दोनों में मुनाफात है। आप सुबह का लफ्ज बोलें शाम का इरादा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सुबह और शाम में मुनाफात है भाई, ये दोनों इकट्ठे हो ही नहीं सकते, ये अलग अलग चीजें हैं। आप सर्दी बोलकर गर्मी का इरादा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोनों में मुनाफात है, ये इकट्ठे ही नहीं हो सकते, एक वक्त में एक चीज हो सकती है, किसी यानी किसी किस्म के इनमें मुनासबत मौजूद नहीं। तो यहां पर भी इसी तरह निकाह और तजवीज के अंदर दोनों की मसलहतें हैं और तमलीक के अंदर सिर्फ एक की मसलहत और फायदा है, तो ये दोनों इकट्ठे हो ही नहीं सकते, इनमें किसी किस्म की मुनासबत मौजूद नहीं। बात समझ में आ गई? दोनों क्या हैं? मुतनाफियन हैं, एक दूसरे के मुनाफी हैं। दोनों की मसलहतें ये और चीज है, और सिर्फ एक की मसलहत ये और चीज है, तो दोनों में कोई मुनासबत नहीं। और मजाज के लिए क्या जरूरी है? माने हकीकी के साथ मुनासबत जरूरी है। बात समझ में आ गई अच्छी तरह? अब फिर देखिए इबारत, भाई कहते हैं लिअन न तजवीज लि तलफीकी, कहते हैं इसलिए क्योंकि तजवीज जो है वो तलफीक के लिए आती है, यानी निकाह की मसलहतों के लिए तजवीज होती है, यानी जिसमें दोनों के लिए फायदा और मसलहत होती है। वह निकाह लिज़म्मी, और निकाह जो है वो जोड़ने और मिलाने के लिए आता है, और इस जोड़ने और मिलाने में भी क्या होता है? दोनों की मसलहतें होती हैं। लेकिन वला जम्मा वलस दिवाज बैन अल मालिकी वल ममलूकी, लेकिन तमलीक के अंदर एक, इधर देखिए, तमलीक के अंदर एक मालिक बनता है और एक ममलूक बनता है, और वला जम्मा, और वहां कोई जोड़ भी नहीं होता, वलस दिवाजा, और कोई मुनासबत भी नहीं होती, बैन अल मालिकी वल ममलूकी, मालिक और ममलूक के दरमियान असलन ऐ कतअन, यानी सिरे से कोई मुनासबत नहीं होती। तो एक के अंदर मुनासबत है, निकाह और तजवीज में दोनों की मसलहतें हैं, दोनों में मुनासबत आ गई, मियां बीवी में मुनासबत आ गई, दोनों की मसलहतें हैं, और तमलीक के अंदर सिर्फ मालिक की मसलहत तो है, गुलाम की मसलहत नहीं, तो दोनों में क्या है? ये तमलीक और निकाह और तजवीज में मुनाफात है। इनमें क्या है मुनाफा, और अहदुल मुतनाफियन को दूसरे के लिए मजाजन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुबह को बोलकर शाम का इरादा नहीं किया जा सकता, गर्मी को बोलकर सर्दी का इरादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों में मुनाफात हैं भाई। एक वक्त में एक चीज हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती। या तो दोनों का फायदा होगा या सिर्फ एक का फायदा होगा, एक चीज हो सकती है। आप बोलना क्या चाहते हैं, तमलीक, तमलीक से क्या पता चला एक का फायदा है। इरादा किसका कर रहे हैं, निकाह और तजवीज का, और उसमें क्या होता है दो का फायदा। ये कैसे हो सकता है, लफ्ज वो बोल रहे हैं जिससे एक के फायदे का पता चल रहा है, और इरादा किसका कर रहे हैं जिसमें दोनों का फायदा है। लिहाजा जो दोनों एक दूसरे के मुनाफी हैं, तो आप तमलीक का लफ्ज बोलकर या हिबा या सदका का लफ्ज बोलकर निकाह और तजवीज का इरादा नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। तो ये माना है, कहते हैं वला जम्मा वला दिवाज बैनल मालिकी वल ममलूकी असला, और कोई जोड़ और कोई मुनासबत नहीं है मालिक और ममलूक के दरमियान, असलन ऐ कतान यानी कतई तौर पर। अब आगे हमारी दलील आएगी, वलाना अन्न तमलीक सबबुन लि मिल्किल मुतातिफी महल्लिहा बिवासितति मिल्किर रकबा। हम कहते हैं कि नहीं, दोनों में मुनासबत मौजूद है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं कि तमलीक के अंदर और तजवीज और निकाह के अंदर इनके माना में कोई मुनासबत मौजूद नहीं। हम कहते हैं नहीं, इनके अंदर मुनासबत मौजूद है। तमलीक का माना है मालिक बनाना, और जब किसी को किसी चीज का मालिक बनाया जाएगा, मसलन किसी को बांदी का मालिक बनाया, तो उसको मिलके रकबी हासिल हुई। क्या हासिल हुई, मिलके रकबी हासिल हुई। रकबा से मुराद जात है भाई, जात है। जो किसी को बांदी का मालिक बनाया तो वो सिर्फ रकबा यानी बांदी की गर्दन का मालिक नहीं हुआ, बल्कि पूरी बांदी का मालिक बन गया। लेकिन अरबी जुबान में बाज आजा के साथ पूरे इंसान को ताबीर किया जाता है, रकबा बोलकर पूरी जात उसकी मुराद होती है। इसी तरह रस बोलकर पूरा इंसान मुराद होता है, या इसी तरह चेहरा बोलकर पूरा इंसान मुराद होता है। रसुल कौम, कौम का सरदार, देखा कौम के सरदार के लिए रस का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया और मुराद उसकी पूरी जात है। या इसी तरह कौम के सरदार के लिए वजहुन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वजहुल कौम, वजहुल कौम। तो जैसे चेहरा जो है इंसान की पहचान का बाइस होता है, इसी तरह कौम का जो सरदार है वो भी किसी कौम की पहचान का बाइस होता है। तो अरबी जुबान में रकबा, रसुन और वजहुन के साथ पूरी जात ताबीर की जाती है। तो बात यह चल रही थी कि जब आप कोई शख्स जो है बांदी का मालिक बनता है तो उसको क्या हासिल हुई, बांदी का मालिक बन गया यानी उसे मिलकर रकबी हासिल हुई, पूरी बांदी की जात का वो मालिक बन गया। और आप जानते हैं कि जो शख्स बांदी का मालिक हो उसके लिए उस बांदी से सोहबत जायज होती है, उसके लिए उस बांदी से सोहबत जायज होती है, इल्ला ये कि कोई मानेअ मौजूद हो तो फिर जायज नहीं होगा। बांदी का मालिक भी होगा लेकिन सोहबत जायज नहीं होगी। मसलन उस बांदी का किसी से निकाह करवाया गया है पहले से, या अब आका ने निकाह करवा दिया तो अब आका के लिए सोहबत जायज नहीं। या मसलन वो बांदी दो या ज्यादा अफराद के दरमियान मुश्तरक है, एक अकेला आदमी उसका मालिक नहीं है, दो या तीन ने मिलकर खरीदा है खिदमत के लिए, तो किसी एक के लिए भी उससे सोहबत जायज नहीं। तो मान्या कोई ना हो, वैसे कोई शख्स जब बांदी का मालिक बनता है तो उसके लिए बांदी से सोहबत जायज होती है। तो देखो बांदी के अंदर अव्वलन जब उसको खरीदा, अव्वलन क्या हासिल हुई, मिलके रकबी, और मिलके रकबी की वजह से ही फिर क्या हासिल हुई, मिलके मुता भी हासिल हो गई। मुता का माना है फायदा, फायदा, लेकिन यहां हर फायदा नहीं मुराद बल्कि सोहबत का फायदा मुराद है, वरना तो फायदा और हर चीज में होगा। मसलन आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी भी आप अपने फायदे के लिए खरीदते हैं कि आप उसमें सफर करते हैं, या और भी कोई चीज खरीदते हैं आप अपने फायदे के लिए खरीदते हैं, तो फायदा या मुता तो हर चीज में होगा, लेकिन यहां हर फायदा मुराद नहीं है बल्कि एक मखसूस मुता, एक मखसूस फायदा यानी सोहबत की बात चल रही है। जब कोई शख्स किसी बांदी का मालिक बनता है, कोई मानेअ ना हो, तो उसके लिए बांदी से सोहबत जायज हो जाती है। तो मालूम हुआ तमलीक की वजह से मिलके रकबी आती है, और मिलके रकबी की वजह से फिर क्या आता है, मिलके मुता आता है। मालूम हुआ तमलीक सबब हुआ मिलके मुता का, तमलीक कहां तक पहुंचा देता है, मिल के मुता तक पहुंचा देता है। और निकाह के अंदर भी क्या हासिल होती है, मिल के मुता ही तो हासिल होती है। जब एक मर्द का एक औरत से निकाह करवा दिया जाए तो उस मर्द के लिए उस औरत से सोहबत जायज हो जाती है, वो मियां बीवी बन गए, वो एक दूसरे के लिए हलाल हो गए। तो देखो निकाह से भी क्या हासिल हुआ, मिल के मुता, और तमलीक ने भी बिल आखिर कहां तक पहुंचा दिया, मिल के मुता तक। तो तमलीक सबब है मिल के रकबी का, और मिल के रकबी सबब है मिल के मुता का। तो गोया तमलीक कहां तक पहुंचा देती है, मिल के मुता तक। तो तमलीक सबब हुआ मिल के मुता का, तमलीक मिल के मुता का सबब हुआ भाई। और सबब बोलकर मुसबब का इरादा किया जा सकता है भाई, कलाम अरब में इस तरह इस्तेमाल होता है कि जिक्र किसको करते हैं, सबब को, और इरादा किसका करते हैं, मुसबब का करते हैं। जैसे अरब कहते हैं आजुमत यदु फुलानिन, आजुमत ज़ा के साथ है भाई, तवाज़ा, आजुमा के क्या माना, बड़ा होना, आजुमत बड़ा हुआ, यदु फुलानिन फुलां का हाथ भाई, यद किसे कहते हैं, हाथ को। और आजुमत देखो मुअन्नस का फेल लाए, मुअन्नस का फेल लाए, और यद क्या है, फाइल। वजह यह कि ये जो इंसानी आजा दो दो हैं ये अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। जैसे आंखें दो हैं भाई, और हाथ दो हैं, पांव दो हैं, घुटने दो हैं, कोहनियां दो हैं। तो ये जो दो दो आजा हैं इंसान के, ये अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। तो यहां यद फाइल बन रहा था तो उसके लिए मुजक्कर का फेल नहीं लाए बल्कि मुअन्नस का फेल लाए, आजुमत यदु फुलानीन फुला का हाथ बड़ा है। और मुराद इसे सखावत होती है, जब कोई शख्स बड़ा सखी हो तो अरबी में कहते हैं आजुमत यदु जैदिन, जैद का हाथ बड़ा है, यानी जैद बड़ा सखी है। माना क्या होता है, जैद बड़ा सखी है। तो यहां देखो यद बोला, और यद बोलकर किसका इरादा किया, सखावत का। भाई यद बोलकर सखावत का कैसे इरादा किया, कहते हैं इसलिए क्योंकि यद वो सबब है सखावत का। हाथ क्या है, सखावत का सबब है, हाथ के जरिए लोगों को हतीये देता है, चीजें देता है, सखावत करता है। तो हाथ हुआ सबब, हाथ क्या हुआ, सबब हुआ, किस चीज का, सखावत का। तो आजुमत यदु फुलानी क्या तर्जमा, फुला बड़ा सखी है। मैंने तो लुगवी माना किया ना, फुला का हाथ बड़ा है, ये लुगवी माना नहीं यहां मुराद होता, बल्कि क्या माना है, फुला बड़ा सखी है। तो जिक्र किया हाथ को, और इरादा किसका किया, सखावत का, और हाथ क्या है, सखावत का सबब है। तो हाथ हुआ सबब और सखावत हुई मुसबब, तो सबब बोलकर मुसबब का इरादा किया गया है। तो अरबी जुबान में ये शाये है और राइज है कि सबब बोलकर मुसबब का इरादा किया जाता है। इसी तरह कभी मुसबब बोलकर सबब का भी इरादा करते हैं, जैसे अरबी में कहते हैं अम तरस समाउ नबातन, अम तरस समाउ नबातन, अम तरा का माना है बरसाना, अम तरस समाउ आसमान ने बरसाया नबातन सब्जे को, अम तरस समाउ नबातन आसमान ने सब्जा बरसाया। भाई आसमान सब्जा बरसाता है या बारिश बरसाता है, बारिश बरसाता है। तो यहां नबात बोलकर बारिश मुराद है, और बारिश को नबात से क्यों ताबीर किया, क्योंकि बारिश सबब है और उस बारिश की वजह से सब्जा पैदा होगा भाई। तो बारिश हुई सबब और सब्जा क्या हुआ, मुसबब, और जिक्र किसको किया, मुसबब को, सब्जे को जिक्र किया नबातन, और इरादा किसका किया, सबब यानी बारिश का। तो अम तरस समाउ नबातन, यहां देखो मुसबब बोलकर सबब का इरादा किया गया, यानी यहां मुसबबियत वाला ताल्लुक है। माना हकीकी और माना मजाजी में कौन सा ताल्लुक है, मुसबबियत वाला, मुसबब होने वाला। जबकि आजुमत यदु फुलानीन, फुला बड़ा सखी है, यहां यद बोलकर सखावत का इरादा किया गया, और इस यद में और सखावत में कौन सा ताल्लुक है, सबबियत वाला। देखो सबब बोलकर मुसबब का इरादा करें तो हम कहेंगे सबबियत वाला ताल्लुक है
जी।
कौन सा,
सबबियत,
ये सबब है। और अगर मुसबब को जिक्र किया और इरादा सबब का किया जाए तो हम क्या कहेंगे, कौन सा इलाका है, जो जिक्र है वो बोलो, मुसबबियत वाला ताल्लुक है। फिर सुनो, आजुमत यदु फलानिन, फलां बड़ा सखी है, जिक्र हाथ को किया और हाथ क्या है सबब, और इरादा किसका किया मुसबब, तो जो जिक्र किया है उसी को बोल दो कि यहां सबबियत वाला ताल्लुक है, सबब को जिक्र किया ना तो सबबियत वाला ताल्लुक है। और अम तरसमा उनबातन, यहां किसको जिक्र किया मुसबब को, तो हम कहेंगे मुसबबियत वाला ताल्लुक है। बात समझ में आ गई। तो बात यह चल रही थी, इमाम शाफी रहमला फरमाते हैं कि तमलीक बोलकर निकाह और तजवीज का इरादा नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों में मुनाफात है, दोनों के मानी में कोई मुनासबत मौजूद नहीं है। निकाह और तजवीज में दोनों का फायदा होता है और तमलीक में सिर्फ एक का फायदा होता है, जबकि हम कहते हैं नहीं, इनमें मुनासबत मौजूद है। तमलीक जो है उसकी वजह से क्या आएगी, मिलके रकबी, और मिलके रकबी से फिर क्या आएगी, मिलके मुता आएगी। तो तमलीक ने कहां तक पहुंचा दिया, मिलके मुता तक, तो तमलीक सबब हुई और मिलके मुता क्या हुआ मुसबब हुआ, और सबब बोलकर मुसबब का इरादा करना जायज है, कलाम अरब में इस तरह किया जाता है। तो जिक्र किसको किया तमलीक, और इरादा किसका किया मिलके मुता, मिलके मुता किस में होता है निकाह में, किस में निकाह। तो देखा मालूम हुआ तमलीक बोलकर निकाह का इरादा सही है, तमलीक बोलकर निकाह का इरादा, क्योंकि निकाह में भी मिलके मुता हासिल होता है और तमलीक ने भी कहां तक पहुंचाया मिलके मुता तक, तो तमलीक बोलकर मिलके मुता यानी निकाह और तजवीज का इरादा करना सही है क्योंकि इनमें सबबियत वाला अलाका है। मालूम हुआ कि हिबा, तमलीक, सदका, बेअ वगैरह, इनके जरिए निकाह का इरादा करना सही है। तो निकाह और तजवीज इनका मजाजी माना हो सकता है, सबब बोलकर किसका इरादा किया जाए मुसबब का इरादा किया जाए। और मैंने आपको बतलाया कि मजाजी माना के लिए हमेशा कोई ना कोई करीना चाहिए, एक तो नियत चाहिए और साथ करीना भी चाहिए, सुनने वाले को भी पता चले, वरना तो लफ्ज सुनते ही जहन फौरन किस तरफ जाता है, हकीकी माना की तरफ जहन जाता है, मजाजी माना की तरफ नहीं जाता। मजाजी माना के लिए कोई करीना चाहिए, और करीना मैंने आपको बतलाया था वो लफ्जिया भी हो सकता है और गैर लफ्जिया भी हो सकता है। तो कभी तो इस मकाम पर करीने लफ्जिया मौजूद होगा, मसलन वो महर को साथ जिक्र कर देता है, मैंने फुला औरत आपको बेच दी 1 लाख रुपए महर के इवज, तो इसे महर को जिक्र कर दिया। भाई ब्याव शिरा के अंदर तो महर नहीं आया करता, महर तो किस में आता है निकाह में। मालूम हुआ ब्या बोलकर किसका इरादा है निकाह का, या उसने सदके और हिबा का लफ्ज बोला है या तमलीक का लफ्ज बोला है और साथ महर को जिक्र कर दिया, भाई महर तो इन चीजों में नहीं आता। मालूम हुआ ये हिबा सदका वगैरह बोलकर किसका इरादा है निकाह का इरादा है। किससे पता चला, महर से पता चला, यानी महर के लफ्ज से पता चला। तो ये करीने लफ्जिया हुआ, क्या हुआ करीने लफ्जिया हुआ। लेकिन बाज औकात निकाह में महर को जिक्र ही नहीं किया जाता, तो फिर महर मिसल आ जाता है, आगे तफसील आ जाएगी भाई महर के बारे में। तो बहरहाल महर को कभी जिक्र नहीं किया जाता, फिर भी करीना तो चाहिए, क्योंकि आप बेअ या हिबा या तमलीक या सदका के लफ्ज को किसमें इस्तेमाल कर रहे हैं मजाजी माना में, और मजाज के लिए क्या चाहिए करीना चाहिए। तो करीना यहां मौजूद है कि आप एक आजाद औरत का निकाह करवा रहे हैं और आजाद औरत का हिबा नहीं किया जा सकता, आजाद औरत को किसी के ममलूका नहीं बनाया जा सकता, आजाद औरत को किसी पर सदका नहीं किया जा सकता, आजाद औरत को किसी के हाथ बेचा नहीं जा सकता। तो ये महल ही नहीं है हिबा का, ये औरत जो आजाद औरत है ना, ये हिबा का महल है ना, ये तमलीक का महल है ना, ये सदके का महल है ना, ये बेअ का महल है। तो इसका आजाद होना ही बतला रहा है कि यहां इन लफ्जों के हकीकी माना मुराद नहीं। तो ये करीना हो जाएगा कि यहां हकीकी माना मुराद नहीं बल्कि मजाजी माना मुराद है। बात समझ में आ गई। अब देखिए किताब पर कहते हैं वला ना, और हमारी दलील यह है कि अन्न तमली का सबबुन लि मिल्किल मुताती, कि जो तमलीक है मालिक बनाना जो है ये सबब है मिलके मुता का, और मुता का क्या माना फायदा, और हर फायदा यहां मुराद है या खास मुता खास फायदा मुराद है, और वो क्या सोहबत करना वो मुराद है। तो ये तमलीक जो है ये सबब है मिलके मुता का यानी मुताए मखसूस का, फी महल लिहा अपने महल में, किसमें तमलीक जो है मिलके मुता का सबब है लेकिन अपने महल में, क्या माना फी महल्लिहा, हा जमीर राजे है मुता को, फी महल्लिहा आई फी महल्लिल मुताती, तमलीक किस चीज का सबब है, मिलके मुता का, लेकिन हर जगह नहीं, अपने महल में। देखो आप मोटरसाइकिल लाए, आप गाड़ी लाए, आप कोई हैवान खरीद कर लाए, आप गुलाम खरीद कर लाए, तो मुझे बताइए क्या यहां वो मखसूस मुता का फायदा है, क्या यहां सोहबत की सूरत है? नहीं। तो तमलीक सोहबत तक पहुंचाएगी हर जगह, जहां सोहबत जायज होगी वहां पर, हां वहां तमलीक जो है सोहबत तक पहुंचाएगी, हर जगह वो मिलके मुता हासिल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ये माना है कि अन्ना तमलीक का सबबुन लि मिल्क अल मुताती, कि तमलीक जो है सबबुन लि मिल्क अल मुताती, वो सबब है मिलके मुता का, फी महल्लिहा, महल्ले मुता में, यानी जहां पर वो नफा जायज भी हो भाई, वो नफा जायज भी हो। और वो किस में सिर्फ जायज है? बांदी के अंदर जायज है, और जगह जायज नहीं है भाई। तो कहते हैं, फिर देखिए, कहते हैं वलाना अन्न तमलीक का सबब उन मिल्क अल मुताती फी महल लिहा, कि तमलीक जो है ये सबब है मिलके मुता का, फी महल लिहा, मुता के महल में, बिवासितति मिलके रकबती, और ये किसके वास्ते से मिलके मुता आएगा? मिलके रकबा के वास्ते से आएगा भाई। तमलीक कहां तक पहुंचाएगी? अवलन मिलके रकबा तक, और मिलके रकबा कहां तक पहुंचाएगा? मिलके मुता तक। तो तमलीक ने मिलके मुता तक पहुंचा दिया, किसके वास्ते से? मिलके रकबा के वास्ते से। यह माना है कि बिवासितति मिलके रकबती, मिलके रकबा के वास्ते से, वह हुआ साबितु बिन निकाही, और यही साबित है निकाह के जरिए, यही मिलके मुता साबित होता है किसके जरिए? निकाह के जरिए। निकाह से भी क्या आती है? मिलके मुता। तमलीक ने भी कहां तक पहुंचाया? मिलके मुता तक पहुंचाया। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वह हुआ साबित बिन निकाह ही, और यही मिलके मुता ही तो साबित है निकाह के जरिए। भाई यहां याद रखना, हुआ यह है मुबतदा, असाबित यह है खबर, ये क्या है? खबर। भाई याद रखो, मुबतदा तो अमूमन मारिफा होता है, हुआ जमीर है और जमीर मारिफा है, और खबर नकेरा होती है, खबर के अंदर असल क्या है वो क्या होनी चाहिए? नकेरा। लेकिन कभी कभार खबर को भी मारिफा ले आते हैं, और ये फिर हसर का फायदा देती है। खबर को भी अगर क्या ले आए? मारिफा, तो फिर ये बाज औकात, हमेशा नहीं, जहां हसर का इरादा हो, तो ये खबर भी मारिफा हो तो ये फिर हसर का फायदा देती है। जैसे यहां पर अगर ये सिर्फ साबित होता, अलिफ लाम ना होता, वह हुआ साबितुन बिन निकाही, और मिलके मुता साबित है निकाह के जरिए, तवज्जो है, लेकिन यहां साहिबे हिदाया मारिफा लेकर आए, वह हुआ साबितु, और ये ही साबित है, देखो हसर आ गया, बिन निकाही किसके जरिए? निकाह के जरिए। तर्जमे में फर्क समझ में आ रहा है? हुआ साबितुन बिन निकाह, तर्जमा करो, ये निकाह के जरिए साबित है, और हुआ साबितु बिन निकाही, यही साबित है निकाह के जरिए। जैसे देखो सूरह फातिहा के अंदर है, इय्याका नाबुदु, देखो होना तो यूं चाहिए, नाबुदु का नाबुदु, हम इबादत करते हैं, आगे काफ जमीर आ गई आपकी, हम ए अल्लाह हम आपकी इबादत करते हैं, नाबुदु का यूं होना चाहिए। लेकिन अगर यूं होता तो इसमें अल्लाह की इबादत का इकरार तो आ जाता, लेकिन किसी और की इबादत की नफी ना होती, तो इसलिए यहां काफ जमीर को नाबुदू पर मुकद्दम किया गया, और कलाम क्या बन गया? इय्याका नाबुदू, और जब जमीर को मुकद्दम कर दिया तो कलाम में हसर आ गया, यानी तख्सीस आ गई। अब क्या माना हुआ? ऐ अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं, मालूम हुआ किसी और की इबादत नहीं करते। इसी तरह यहां अगर नकेरा होता, वह हुआ साबितुम बिन निकाही, और यह मिलके मुता साबित है निकाह के जरिए, ये मिलके मुता साबित है निकाह के जरिए, लेकिन असाबित ले आए, अब हसर आ गया, वह हुआ साबित बिन निकाही, और ये मिलके मुता ही तो साबित है निकाह के जरिए, निकाह के जरिए मिलके मुता ही साबित होता है और तो कुछ नहीं। तो और तमलीक ने भी कहां तक पहुंचा दिया? मिलके मुता तक पहुंचा दिया, लिहाजा तमलीक बोलकर निकाह का इरादा सही है, क्योंकि तमलीक ने उसी चीज तक पहुंचा दिया जिसका फायदा निकाह देता है, और निकाह किसी और चीज का फायदा नहीं देता भाई। तो कहते हैं वहुआ साबित बिन निकाही, और मिलके मुता ही साबित होती है निकाह के जरिए। वह सबबी ये तो तरीकुल मजाजी, और सबब होना ये मजाज का तरीका है। तो तमलीक सबब हुई किसके लिए? मिलके मुता के लिए। और सबब बोलकर मुसबब का इरादा सही है। बात समझ में आ गई। वह सबबी ये तो तरीकुल मजाजी, और सबब होना ये मजाज का तरीका है। तो सबबियत मजाज का एक तरीका है। मजाज मुरसल के मैंने बताया था कोई 20-25 अलाके हैं, उनमें से एक अलाका सबबियत वाला भी है। तो लिहाजा यहां मजाज का तरीका मौजूद है। तो तमलीक बोलकर निकाह और तजवीज का इरादा सही है भाई। आगे देखिए भाई, कहते हैं वयन आकिदु बिलफ़्ज़िल बैई, और इसी तरह निकाह जो है वो मुनाकिद हो जाता है लफ्ज़े बै से भी। बै के अंदर इधर देखिए, बै किसे कहते हैं? तमलीकुल आईनी बिल इवस, इवस के साथ दूसरे को चीज का मालिक बनाना। तो बै के अंदर तमलीक भी है, और तमलीक किस चीज की होती है? ऐन की या मनाफिया की? आयन के, जब आप कोई चीज खरीदते हैं आप उस चीज की जात के मालिक बन जाते हैं, तो तमलीकुल आयन भी है, और उसी वक्त मालिक बन जाते हैं। तो बै भी तमलीकुल आयन फिलहाल का फायदा देती है। लिहाजा बै का लफ्ज बोलकर निकाह का इरादा सही है। तो कहते हैं वयन आकिदु बी लफ्जिल बै, और निकाह मुनाकिद हो जाता है लफ्ज बै से भी। हुआ सहीह, यही कौल सही है। देखो फिर हसर आया, हुआ है मुबतदा और असहीह यह है खबर, और खबर को भी मारिफा ले आए, और खबर को भी मारिफा उमूमन किस लिए लाते हैं? हसर पैदा करने के लिए। तो हुआ सहीह, यही सहीह है, मालूम हुआ दूसरा कौल सही नहीं। यहां एक और नुक्ता जो मैं बयान करता हूं, पुराने तुलबा को तो पता होगा, नए तुलबा समझ लें भाई। एक होता है लफ्ज़ सहीह, एक होता है असह। कभी साहिब हिदाया फरमाएंगे कि हादा सहीह या हुआ सहीह, ये सहीह है, और कभी फरमाएंगे हुआ असह, इसमें तफजील ले आएंगे, ये ज्यादा सहीह है। कभी क्या फरमाएंगे? हादा सहीह, ये सही है, और कभी क्या फरमाएंगे? हादा असह, ये ज्यादा सही है। अब मुझे आप बताइए किसमें कुव्वत ज्यादा है? असह में। तुलबा उमूमन यही कहते हैं कि असह में ज्यादा कुव्वत है, क्योंकि असह का क्या माना है? ज्यादा सही, इसके अंदर ज्यादा का लफ्ज आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखो सहीह के अंदर कुव्वत ज्यादा है। इसलिए क्योंकि जब साहिब हिदाया ने कह दिया हादा सहीह, ये सहीह है, इसका मतलब है दूसरा कौल गैर सहीह है, वो सहीह नहीं है। तो जब सही कह दिया तो दूसरे कौल को बिल्कुल रद्द कर दिया कि वो सही नहीं। लेकिन जब कहा हादा असह, ये कौल ज्यादा सहीह है, तो इसका मतलब यह है कि दूसरा भी सही है लेकिन ये वाला कौल ज्यादा सही है। तो असह के अंदर दूसरे का रद्द नहीं होता। हां, एक कौल का आला होना बयान कर दिया जाता है, एक कौल का असह होना तो बयान हो गया, लेकिन दूसरे कौल की तर्दीद नहीं, वो भी सही है लेकिन ये वाला कौल ज्यादा सही है। तो किसमें कुव्वत ज्यादा? सहीह में, कि इसमें दूसरा कौल बिल्कुल ही रद्द हो जाता है कि वो सही ही नहीं है। तो साहिब हिदाया फरमाते हैं वयनाकिदु बिलफ़्ज़िल बैअ, और निकाह मुनाकिद हो जाता है लफ्ज़े बैअ से। हुआ सहीह, यही कौल सहीह है। लिवजूदी तरीकिल मजाजी, इसलिए क्योंकि मजाज का तरीका पाया गया। मजाज का तरीका पाए जाने की वजह से बै के अंदर भी मजाज का तरीका पाया गया। किस तरह? बै किस चीज का फायदा देती है? तमलीक का। तमलीक बै में क्या होती है? तमलीक होती है, और तमलीक जो है कहां तक पहुंचाती है? मिलके रकबी तक, और मिलके रकबी कहां तक पहुंचाती है? मिलके मुता तक, महल्ले मुता में। आप एक बांदी को खरीदेंगे, आप मालिक बन गए, तो मिलके मुता हासिल हुआ या नहीं हुआ आपको? तो देखा, तो बै तमलीक है, और इस तमलीक ने क्या फायदा दिया? मिलके रकबी का, आप उस बांदी के मालिक बन गए, और मिलके रकबी ने कहां तक पहुंचाया? मिलके मुता तक, कि उस बांदी से सोहबत आपके लिए क्या हो गई? जायज हो गई। तो मालूम हुआ बै बोलकर भी निकाह का इरादा सही है, क्योंकि बै कहां तक पहुंचाने वाली है, मिलके मुता तक। तो बै गोया सबब है और मिलके मुता मुसबब है, और सबब बोलकर मुसबब यानी मिलके मुता यानी निकाह का इरादा सही है। यह माना है ली वजूदी तरीक इल मजाज, मजाज का तरीका पाए जाने की वजह से। बात समझ में आ गई। साहिब हिदाया ने फरमाया हुआ सहीह, यही सहीह है, यही सही है। दरअसल इसके जरिए साहिब हिदाया रद कर रहे हैं अबू बकर आमश रहिमहुल्लाह के कौल को। साहिब हिदाया किसके कौल को रद कर रहे हैं? अबू बकर आमश। अबू बकर आमश बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं अहनाफ के भाई, और इनकी अलबत्ता तारीख वफात आम किताबों में मुझे नहीं मिली। अलबत्ता इनके शागिर्द जो हैं वो अबू जाफर हिंदवानी हैं। अबू जाफर हिंदवानी ये बहुत मशहूर फकीह गुजरे हैं अहनाफ के, और ये फिका के इतने बड़े माहिर थे कि इनको उलमा अबू हनीफा सगीर कहते थे। यानी ये तो छोटे अबू हनीफा हैं भाई, यानी इतने फिका के अंदर माहिर थे और ऐसे मकाम पर पहुंच गए थे कि हर हर मसला कुरान और हदीस से निकालकर पेश फरमाते, तो उलमा इनकी जहानत देखकर दंग रह जाते। तो उनका नाम उन्होंने क्या रख दिया? अबू हनीफा सगीर रख दिया। तो ये जो अबू जाफर हिंदवानी हैं, ये शागिर्द हैं अबू बकर आमश के, और इनकी वफात हुई है 362 हिजरी में। तो जब शागिर्द जो हैं अबू जाफर, उनकी वफात 362 में हुई है, तो उस्ताद की वफात भी इसी जमाने के करीब में हुई होगी। बात समझ में आ रही है? तो लेकिन बहरहाल इनकी तारीख वफात आम किताबों में मिली नहीं, तो यही 320, 30 या 40 इसके लगभग जमाने में इनकी वफात हुई होगी भाई। किताबों में आपको इमाम आमश का लफ्ज भी मिलेगा, लेकिन याद रखना ये इमाम आमश और हैं भाई, वो मुहद्दिस हैं भाई, और उनकी शोहरत ज्यादा है। तो कहीं आपको इमाम आमश का लफ्ज मिले तो ये ना समझें कि ये शायद अबू बकर आमश मुराद है। नहीं, अबू बकर आमश भी बहुत बड़े फकीह गुजरे, लेकिन शोहरत ज्यादा इमाम आमश की है, और वो मुहद्दिस हैं भाई, फकीह नहीं है, मुहद्दिस के एतबार से उनकी शोहरत है। तो साहिब हिदाया ने क्या फरमाया? बै के लफ्ज से निकाह मुनक़िद हो जाएगा। किसका कौल रद्द कर रहे हैं? अबू बकर आमश का, अबू बकर आमश। और अबू बकर आमश फरमाते हैं कि बै के लफ्ज से निकाह मुनक़िद नहीं होगा। क्यों? कहते हैं इसलिए कि बै कहते हैं मुबादलतुल माल बिल माल। बै किसे कहते हैं? मुबादलतुल माल बिल माल, माल का माल के साथ तबादला करना, ये क्या है? बै है। और निकाह के अंदर, निकाह के अंदर खावंद के जिम्मे महर आ जाता है, और खावंद बीवी से नफा उठाने का मालिक बन जाता है। तो खावंद की तरफ से तो माल आ रहा है, लेकिन बीवी की तरफ से तो सिर्फ नफे का मालिक बन रहा है। तो एक तरफ से तो माल है, दूसरी तरफ से माल नहीं है। बै के अंदर दोनों तरफ से माल होता है, और निकाह में एक तरफ माल है और एक तरफ सिर्फ क्या है? मुनाफा है। लिहाजा बै बोलकर निकाह का इरादा सही नहीं। लेकिन साहिब हिदाया ने आपको बता दिया कि बै तमलीक का फायदा देती है, और तमलीक कहां तक पहुंचाता है? मिलकर रकबी तक, और मिलकर रकबी फिर कहां तक पहुंचाती है? मिलके मुता तक। मालूम हुआ बै सबब है मिलके मुता का, लिहाजा बै बोलकर यानी सबब बोलकर मिलके मुता का यानी निकाह का इरादा सही है भाई, क्योंकि यहां सबबियत मौजूद है, मजाज का तरीका मौजूद है भाई। आगे देखिए, कहते हैं वला यनाकिदु बिलफ्सिल इजारति फिस सहीह, और अकदे निकाह मुनाकिद नहीं होता इजारा के लफ्ज से फिस सहीह, सही कौल में। सही कॉल के मुताबिक इजारा के लफ्ज से निकाह मुनाकिद नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? वजह मैं बयान कर चुका हूं भाई। वजह यह मैंने जिक्र किया कि इजारा ये तमलीक ऐन का फायदा नहीं देता, बल्कि तमलीक मुनाफा का फायदा देता है, और निकाह तो उन लफ्जों से मुनाकिद होगा जो तमलीक ऐन फिलहाल का फायदा दें। तमलीक भी किसकी हो? ऐन की हो, मुनाफा की सिर्फ ना हो। तो इजारा तमलीक ऐन का फायदा नहीं देता, वो तो तमलीक मुनाफा का फायदा देता है, इसलिए इजारा के लफ्ज से निकाह मुनाकिद नहीं होगा भाई। तो कहते हैं वला यनाकिदु बिलफ्ज़िल इजारति फिस सहीह, और निकाह मुनाकिद नहीं होगा इजारा के लफ्ज से फिस सहीह, सही कौल में। لأنه ليس بسبب لملك المتعة, इसलिए क्योंकि इजारा जो है वो मिल्क मुता का सबब नहीं है. इजारा कभी भी मिल्क मुता तक नहीं पहुंचाता. मसलन मसलन कोई शख्स बांदी को किराए पर उजरत पर ले आता है कि ये 10 दिन तक या 1 माह तक मेरे बच्चों की खिदमत करेगी, इजारे पर ले आता है, उसके मालिक को क्या दे दी, उजरत दे दी, तो बांदी को इजारे पर ले आया. तो मुझे बताइए क्या इस बांदी से इस शख्स के लिए सोहबत जायज हो जाएगी? इस शख्स के लिए इस बांदी से सोहबत जायज नहीं. मालूम हुआ देखो, इजारा मिलके मुता तक नहीं पहुंचाता, बेअ सबब बनता है, पहुंचाता है, मिलके रकबी आएगी और फिर मिलके रकबी के वास्ते से मिलके मुता आएगी. लेकिन इजारे में मिलके रकबी आएगी नहीं, जब मिलके रकबी नहीं तो मिलके मुता भी नहीं. यह माना है लिअन्नहु लैसा बिसबबिन लिमिल्किल मुताती, इसलिए क्योंकि इजारा जो है वो मिलके मुता का सबब नहीं है. यहां जो मतन में आया ना कि सही कौल के मुताबिक इजारे से निकाह मुनक्किद नहीं होगा, इसके जरिए रद्द कर रहे हैं इमाम करखी रहमहुल्ला के कौल को. इमाम करखी रहमहुल्ला बहुत बड़े अहनाफ के फकीह गुजरे हैं और 340 हिजरी में इनकी वफात हुई है, यानी वही जमाना है अबू बकर आमश का और इमाम करखी का और इसी तरह फकीह अबू जाफर हिंदवानी, इन सब का तकरीबन एक जमाना है. तो इमाम करखी रहमहुल्ला फरमाते हैं कि इजारे के लफ्ज से निकाह मुनक्किद हो जाएगा, इजारे के लफ्ज से निकाह मुनाकिद हो जाएगा. लेकिन साहिब हिदायत ने फरमाया नहीं, सही कौल के मुताबिक इजारे से निकाह मुनाकिद नहीं होगा. वजह क्या, इमाम करखी क्यों फरमाते हैं निकाह मुनाकिद हो जाएगा? कहते हैं इसलिए इमाम करखी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इजारे के अंदर भी तमलीक मुनाफिया होती है. क्या? तमलीक मुनाफिया होती है और निकाह के अंदर भी क्या होती है, मिल के मुनाफिया ही तो हासिल होती है. निकाह के अंदर एक शख्स जो है बीवी का मालिक बन जाता है या उसको सिर्फ मिलके मुता हासिल होती है? सिर्फ मिलके मुता हासिल होती है, उससे नफा उठाना यानी सोहबत जायज होती है. वो बीवी का मालिक नहीं बना भाई, बीवी आजाद है भाई, बीवी कोई इसकी ममलूक नहीं, वो एक आजाद औरत है. तो इजारे के अंदर भी मुनाफे हासिल होते हैं और निकाह में भी मुनाफे हासिल होते हैं. तो इमाम करखी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इजारे के लफ्ज से निकाह मुनक्किद हो जाएगा, इसलिए इजारे का लफ्ज बोलकर निकाह का इरादा सही है, निकाह मुनक्किद हो जाएगा. लेकिन साहिब हिदायत ने आपको बताया कि सही कौल यह है कि इजारे के साथ निकाह मुनक्किद नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इजारा वो सिर्फ मुनाफिया का मालिक बनाता है, जात का मालिक नहीं, यानी वहां मिलके रकबी नहीं, और जब मिलके रकबी नहीं तो मिलके मुता भी नहीं. जैसे मैंने मिसाल जिक्र कर दी, एक शख्स एक बांदी को उजरत पर लेकर आया, किस लिए, कामकाज के लिए, तो इस शख्स के लिए उस बांदी से सोहबत जायज नहीं है. सही कौल के मुताबिक इजारे के लफ्ज से निकाह मुनाकिद नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इजारे से मुनाफे का इंसान मालिक बनता है, रकबे का मालिक नहीं. जब मिलके रकबी नहीं तो मिलके मुता भी हासिल नहीं, तो इजारा मिलके मुता तक पहुंचाता ही नहीं है, लिहाजा इसके जरिए निकाह भी मुनाकिद नहीं होगा. आगे देखिए भाई, कहते हैं वला बी लफ्जिल इबाहति वल इहलाल वल इहारति, और इसी तरह निकाह मुनाकिद नहीं होता इबाहत इहलाल और इआरे के लफ्ज से भी. इबाहत भाई मुबाह करना, इहलाल का माना हलाल करना, इनसे भी निकाह मुनक्किद नहीं होगा, क्योंकि मुबाह करना या हलाल करना इसमें दूसरे को मालिक नहीं बनाया जाता, उसको इजाजत दी जाती है, उसके लिए जायज कर दिया जाता है. जैसे आप दावत पर गए तो आपके लिए वो खाना खाना जायज है, आप उस खाने के मालिक नहीं. तो लिहाजा इबाहत और इहलाल में सिरे से तमलीक ही नहीं. किन लफ्जों से निकाह मुनक्किद होगा जो किसका फायदा दें? तमलीक का. और तमलीक भी किस चीज की हो? ऐन की. और किस वक्त? फिलहाल, यानी उसी जमाने में. जबकि इबाहत और इहलाल, इसमें हलाल करना है, इसमें तो सिरे से तमलीक है ही नहीं, मालिक बनाया ही नहीं जाता, लिहाजा इनके जरिए भी निकाह मुनक्किद नहीं. इसी तरह आरियत जो है, इआरा, आरियतन किसी को कोई चीज देना, तो उसमें भी मुनाफिया का मालिक बनाया जाता है. किसका? मुनाफे का मालिक बनाया जाता है, ऐन का मालिक नहीं बनाया जाता, जबकि निकाह के अंदर जरूरी है कि निकाह उसी लफ्ज से मुनाकिद होगा जिसमें तमलीक ऐन हो, जबकि इआरे में तमलीक ऐन नहीं बल्कि तमलीक मनाफिया है। बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं वला बिलफ्ज़िल इबाहति वल इहलाल वल इआरति, और निकाह मुनाकिद नहीं होता इबाहत इहलाल और इआरे के लफ्ज़ से भी। लिमा कुलना, उसी वजह से जो हमने कहा कि ये मिलके मुता का सबब नहीं, ये मिलके मुता तक पहुंचाते नहीं। मिलके मुता तक जो लफ्ज पहुंचा है, कैसे पहुंचाता है मिलके मुता तक? अव्वलन मिलके रकबी आती है, फिर मिलके मुता आती है मुता के महल के अंदर, भाई जहां मुता जायज भी हो। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है ये मिलके मुता तक नहीं पहुंचाते क्योंकि इनमें मिलके रकबी ही हासिल नहीं होती। बात समझ में आ गई? वला बिल अफजिल वसीयती, और इसी तरह निकाह मुनाकिद नहीं होता वसीयत के लफ्ज से भी। लिअन्नहा तूजिबुल मिल्का मुजाफन इला मा बादल मौती, इसलिए क्योंकि वसीयत का लफ्ज जो है तूजिबुल मिल्का अय तुस्बितुल मिल्का, ये मिल्कियत को साबित करता है। याद रखो फिका की किताबों में वजबा यजीबू सबता यसबुतू के माना में आम इस्तेमाल होता है, इसी तरह औजबा यूजीबू फिका की किताबों में असबता युसबितू के माना में आम इस्तेमाल होता है। तो जहां भी वजबा का लफ्ज आ जाए तो आपने उसका तर्जमा हमेशा वाजिब के नहीं करने, इसी तरह औजबा का लफ्ज आ जाए और आप हमेशा उसका माना वाजिब करने के करें, ऐसा नहीं है। कहीं उसका माना वाजिब करना होगा और कहीं साबित करना। तो यहां तुजिबु किस माना में है? तुस्बितु के माना में है। कहते हैं वला बिलफ़्ज़िल वसीयती, और जो निकाह जो है वसीयत के लफ्ज़ से भी मुनक़िद नहीं होता। लिअन्नहा तूजिबुल मिल्का, इसलिए क्योंकि वसीयत का जो लफ्ज़ है तूजिबुल मिल्का अय तुस्बितुल मिल्का, ये मिल्कियत को साबित करता है। मुजाफन इला मा बादल मौती, इस हाल में कि ये मंसूब होता है मौत के माबाद की तरफ। भाई मसलन एक शख्स कहता है मेरे मरने के बाद मेरी ये गाड़ी जैद को दे देना, तो देखो जैद उस गाड़ी का मालिक बनेगा, लेकिन अभी बनेगा या वसीयत करने वाले की मौत के बाद? उसकी मौत के बाद जो है मालिक बनेगा। तो वसीयत तमलीक का फायदा देती है, और तमलीक भी किस चीज की है? ऐन की है, लेकिन फिलहाल है या मा बादल मौत है? मा बादल मौत है, लिहाजा उसके जरिए भी निकाह मुनाकिद नहीं होगा। जी फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वला बिलफ़्ज़िल वसीयती, और निकाह मुनाकिद नहीं होगा वसीयत के लफ्ज़ से। लिअन्नहा तूजिबुल मिल्का मुजाफन इला मा बादल मौती, इसलिए क्योंकि वसीयत का लफ्ज़ जो है तूजिबुल मिल्का, ये मिल्कियत को साबित करता है। मुजाफन इला मा बादल मौती, इस हाल में कि ये मिल्कियत जो है इसकी निस्बत होती है मौत के बाद की तरफ, मौत के बाद के वक्त की तरफ इसकी निस्बत होती है। बात समझ में आ गई? हल हो गया? चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।